एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे उपन्यास पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसे अक्सर मतलब कई बड़े आलोचक अंग्रेजी साहित्य की सबसे महान कृतियों में गिनते हैं, जॉर्ज एलियट का मिडिल मार्च, अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ।
हाँ, और ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, ये तो 19वीं सदी के इंग्लैंड के एक छोटे काल्पनिक शहर के बहाने इंसान के मन, समाज और जीवन की जटिलताओं का एक पूरा खाका है।
बिल्कुल, और जॉर्ज एलियट ये नाम भी तो अपने आप में कहानी है। असली नाम मैरी एन इवांस, पुरुष नाम से लिखना उस जमाने में ये कोई आम बात नहीं थी।
सही कहा, उस दौर में महिला लेखिकाओं को आप जानती हैं ज्यादातर हल्के फुल्के रोमांस लिखने वाला ही समझा जाता था, और मैरी एन इवांस तो दर्शन, विज्ञान, कई भाषाओं की ज्ञाता थीं, अनुवादक थीं। उन्हें गंभीरता से लिया जाए, उनके काम की बौद्धिक गहराई पर ध्यान दिया जाए, शायद इसीलिए उन्होंने ये पुरुष नाम चुना। एक तरह का कवच है ना।
हाँ, एक कवच, ताकि काम को परखा जाए लेखिका के जेंडर को नहीं। उनका मकसद भी तो सिर्फ किस्से कहना नहीं था, बल्कि मानव जीवन को उसकी परतों को समझना था। और मिडिल मार्च जो 1871-72 में आया, वो इंग्लैंड में बड़े सामाजिक उथल पुथल रिफॉर्म एक्ट से ठीक पहले के दौर, मतलब 1829 से 32 के बीच की कहानी कहता है।
और ये काल्पनिक शहर मिडिल मार्च, वो जैसे एक माइक्रोस्कोप बन जाता है। हम उस दौर के समाज को, पुरानी सोच और नई उम्मीदों के बीच जो टकराव चल रहा था, उसे बहुत करीब से देख पाते हैं। उपन्यास का उपशीर्षक भी यही कहता है, प्रांतीय जीवन का अध्ययन। साफ है कि एलियट का कैनवस कितना बड़ा था।
और इस अध्ययन में एक विचार बार बार आता है, जीवन का जाल या वेब।
हाँ, वो जाल का रूपक, एलियट इसे बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करती हैं। कितना सच है ये, है ना, कि हमारी जिंदगियां, हमारे सपने, हमारे छोटे छोटे नैतिक फैसले भी सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। कोई भी अकेला नहीं है, एक धागा खींचो तो पूरा जाल हिल जाता है।
बिल्कुल, जैसे आज हम नेटवर्क इफेक्ट की बात करते हैं, कुछ वैसा ही।
तो चलिए इस जाल के कुछ अहम धागों को पकड़कर कहानी में उतरते हैं।
उपन्यास के केंद्र में दो युवा हैं, दोनों आदर्शवादी, आंखों में बड़े सपने, लेकिन
दोनों के सपनों का अंजाम बिल्कुल अलग होता है। पहली है डोरोथिया ब्रुक, अमीर, सुंदर और बहुत बहुत जोशीली लड़की। उसके अंदर एक गहरी तड़प है कुछ बड़ा करने की, कुछ सार्थक, ज्ञान की प्यास है।
लेकिन सवाल वही कि विक्टोरियन समाज एक औरत को ऐसे सपनों के लिए कितनी जगह देता है, यहीं से उसकी कहानी का मोड़ शुरू होता है।
हाँ, उसकी वो जो एलियट लिखती हैं, आध्यात्मिक भव्यता अवसर की क्षुद्रता के साथ मेल नहीं खाती, और इसी अलाश में वो एक अधेड़ उम्र के विद्वान रेवरेंड एडवर्ड कैसबॉर्न उनमें अपना आदर्श देख लेती है। उसे लगता है कि कैसबॉर्न ज्ञान के भंडार हैं, और वो उनकी पत्नी बनकर उनके उस बड़े काम द की टू ऑल मिथोलॉजीज में मदद करके अपनी जिंदगी को मायने देगी।
ये सोचना, क्या ये सिर्फ डोरोथिया की नादानी थी या उस समाज की सीमाएं भी थी जो उसे अपनी ऊर्जा लगाने का कोई और रास्ता ही नहीं दिखा पा रहा था। खैर, ये शादी का फैसला उसके आदर्शवाद का असलियत से पहला और शायद सबसे दर्दनाक टकराव बनता है।
बिल्कुल, और असलियत खुलती है रोम में हनीमून पर। उस कला और इतिहास की शहर में डोरोथिया को बौद्धिक साझेदारी की जगह क्या मिलता है? कैसबॉर्न का रूखापन, उनका अहम, उनकी ईर्ष्या, वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। डोरोथिया की उम्मीदें वो बिखर जाती हैं। विल लैडिस्लॉ से, जो कैसबॉर्न से एकदम उलट है, कला, जिंदगी, जोश से भरा हुआ, और वहां एक अनकहा सा जुड़ाव शुरू होता है।
तो एक तरफ डोरोथिया के टूटते सपने हैं और दूसरी तरफ मिडिल मार्च में एक और नौजवान आता है बड़े सपनों के साथ, डॉक्टर टर्टियस लिडगेट।
हाँ, लिडगेट महत्वाकांक्षी, वो शहर में मेडिकल साइंस को आगे बढ़ाना चाहता है, इलाज के नए तरीके लाना चाहता है, अस्पताल खोलना चाहता है, जुनून है उसमें, काबिलियत भी है।
लेकिन मिडिल मार्च का वो जाल, वो उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आते ही पुराने डॉक्टरों का विरोध है ना।
बिल्कुल, शहर के जो जमे जमाए डॉक्टर हैं वो उसे शक की निगाह से देखते हैं, और जैसे डोरोथिया ने जीवन साथी चुनने में गलती की, वैसी ही एक भूल लिडगेट भी कर बैठता है। शहर के मेयर की बेटी रोजामंड विंसी उसके आकर्षण में फंस जाता है।
रोजामंड विंसी, जो दिखने में तो एकदम परफेक्ट लगती है, सुंदर, सलीकेदार, पियानो बजाती है, लेकिन क्या लिडगेट उसकी उस बाहरी चमक के पीछे देख पाता है, उसके स्वार्थ को, उसके दिखावे को?
शायद नहीं। उसे लगता है रोजामंड उसकी साथी बनेगी, उसके सपनों को समझेगी, पर रोजामंड की दुनिया तो अलग है। उसे तो बस ऐशो आराम चाहिए, सामाजिक रुतबा, महंगी चीजें। शादी के बाद लिडगेट पर उसके खर्चों का बोझ वो बढ़ता जाता है, वो कर्ज में डूबने लगता है।
और रोजामंड को उसके काम से, उसके सुधारों से कोई मतलब नहीं। लिडगेट अकेला पड़ जाता है, फंसा हुआ महसूस करता है।
हाँ बिल्कुल।
ये दो शादियां, मतलब डोरोथिया कैसाबोन और लिडगेट रोजामंड, ये उपन्यास के केंद्र में है। एलियट जैसे दिखा रही है कि जीवन साथी का चुनाव कितना कितना निर्णायक हो सकता है। ये सिर्फ निजी मामला नहीं, ये आपके सपनों, आपकी नैतिकता, आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है।
और दोनों ही मामलों में एक गलत चुनाव किरदारों को उनके आदर्शों से भटका देता है, उन्हें समझौते करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन हर कहानी इतनी दुखद नहीं है, एक उम्मीद की किरण भी है।
हाँ, रोजामंड का भाई फ्रेड विंसी और मैरी गार्थ।
जी, फ्रेड शुरू में तो एकदम लापरवाह है, कामचोर, सोचता है चाचा पीटर फेदरस्टोन की जायदाद तो मिल ही जाएगी। लेकिन मैरी गार्थ वो अलग है, समझदार, ईमानदार, अपने सिद्धांतों पर चलने वाली। वो साफ कह देती है कि फ्रेड जब तक जिम्मेदार नहीं बनेगा, मेहनत करना नहीं सीखेगा, वो उसे शादी नहीं करेगी।
मैरी गार्थ का किरदार वाकई कमाल का है, जैसे वो उपन्यास की नैतिक कंपास हो। याद है वो सीन जब पीटर फेदरस्टोन मरते वक्त मैरी से अपनी एक वसीयत जलाने को कहते हैं, जिससे शायद फ्रेड को फायदा होता?
हाँ, और मैरी साफ मना कर देती है, क्योंकि वो गलत है, भले ही फ्रेड को निराशा हो। गजब की हिम्मत।
और यही इनकार एक तरह से फ्रेड के लिए अच्छा साबित होता है। उसे समझ आता है कि उसे खुद कुछ करना होगा।
बिल्कुल, वो मेहनत करता है, मैरी के पिता से काम सीखता है और धीरे धीरे एक जिम्मेदार इंसान बनता है। उनका रिश्ता आपसी सम्मान और यथार्थ पे टिका है। डोरोथिया और लिडगेट के रिश्तों से एकदम अलग। ये दिखाता है कि सच्ची साझेदारी क्या होती है।
कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, मिडिल मार्च के उस जाल के धागे और उलझते जाते हैं। फिर कैजमोन की मौत होती है, लेकिन मरते मरते भी वो अपनी वसीयत में वो शर्त रख जाते हैं।
हाँ, कि अगर डोरोथिया ने विल लैडिस्लॉ से शादी की तो उसे जायदाद नहीं मिलेगी। ये जैसे उनकी ईर्ष्या का उनका आखिरी हमला था।
उफ, और फिर वो स्कैंडल, शहर के अमीर बैंकर निकोलस बुलस्ट्रोट का।
हाँ, वो स्कैंडल तो जैसे पूरे शहर को हिला देता है, और लिडगेट की जिंदगी में तो भूचाल ही आ जाता है। बुलस्ट्रोट का एक काला अतीत है, जो जॉन राफेल्स नाम का आदमी जानता है और उसे ब्लैकमेल करता है। फिर राफेल्स बीमार पड़ता है और मर जाता है।
शहर में अफवाहें कि लिडगेट ने पैसे लेकर राफेल्स की मौत में मदद की।
हाँ।
कितना कितना भयानक है ये।
हाँ, एक डॉक्टर जो शहर का भला करने आया था, वही शहर की अफवाहों और पाखंड का शिकार हो जाता है। उसकी इज्जत, उसके सपने सब मिट्टी में मिल जाते हैं।
ये उसकी कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। पूरा शहर उसके खिलाफ है, सिवाय एक इंसान के,
डोरोथिया।
जब कोई लिडगेट पर यकीन नहीं करता, वो उसकी बेगुनाही पर भरोसा करती है और खुलकर उसका साथ देती है।
और यही हम डोरोथिया का असली विकास देखते हैं। वो अब सिर्फ किताबी आदर्शों वाली लड़की नहीं रही।
वो मुश्किल वक्त में सही के लिए खड़ा होना, सहानुभूति दिखाना, हिम्मत दिखाना सीख गई है।
बिल्कुल।
और आखिर में वो अपना सबसे बड़ा फैसला लेती है, समाज की परवाह नहीं करती, कैसबोन की शर्त को ठुकराती है और विल लैडिस्लॉ से शादी करती है। दौलत और रुतबे पर सच्चे प्यार और आत्मसम्मान को चुनती है।
और यहाँ फिर वो जाल वाली बात कितनी साफ दिखती है ना, कैसे बुलस्ट्रोट के काम का असर लिडगेट पे पड़ा, लिडगेट की मुसीबत ने कैसे डोरोथिया को नैतिक रूप से मजबूत किया। हर किरदार, हर घटना, सब जुड़े हैं।
हाँ, कि हमारे कर्मों का असर कहाँ तक जाता है, हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उपन्यास के अंत में हम देखते हैं लिडगेट मिडिलमार्च छोड़ देता है, सफल डॉक्टर बनता है, पर वो महान शोध, वो सपना अधूरा रह जाता है।
बुलस्ट्रोट को भी अपमानित होकर शहर छोड़ना पड़ता है। फ्रेड और मैरी एक शांत, संतुष्ट, ईमानदार जिंदगी जीते हैं, और डोरोथिया विल के साथ शायद वो उतनी महान जिंदगी नहीं जीती जैसा उसने कभी सोचा था, पर एक सच्ची प्रेम भरी जिंदगी जरूर जीती है।
अगर हम किरदारों की भावनात्मक यात्रा देखें, डोरोथिया का सफर एक भोली आदर्शवादी लड़की से एक परिपक्व समझदार औरत बनने का है। वो सीखती है कि दुनिया शायद बड़े नाटकीय कामों से नहीं बदलती।
हाँ, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम छोटे छोटे नैतिक काम करते हैं, जो सहानुभूति दिखाते हैं, उनसे बदलती है। एलियट के शब्दों में, अनहिस्टोरिक एक्ट्स।
जबकि लिडगेट की कहानी वो एक चेतावनी जैसी लगती है ना? इतनी काबिलियत, इतने ऊंचे सपने और फिर कड़वे समझौते, ये दिखाता है कि कैसे एक गलत चुनाव या सामाजिक दबाव आपकी पूरी क्षमता को नष्ट कर सकता है। बहुत दुखद।
बहुत दुखद। और कैसबॉर्न, वो तो जैसे बौद्धिक अहंकार और भावनात्मक सूखेपन की मूर्ति बनकर रह जाते हैं। एक सबक कि ज्ञान अगर इंसानियत से खाली हो तो कितना कितना बेमानी है।
तो अगर हम इस विशाल उपन्यास के कुछ मुख्य संदेशों को समेटें तो क्या होगा? एक तो साफ तौर पर व्यक्ति और समाज का तनाव है, अपने सपने पूरे करने की इच्छा और समाज की रुकावटें।
दूसरा, महिलाओं की स्थिति, खासकर उस दौर में एक बुद्धिमान महत्वाकांक्षी महिला के लिए अवसरों की कितनी कमी थी, डोरोथिया की कहानी यही दिखाती है। तीसरा, अहंकार और सहानुभूति का फर्क। कैसबॉर्न, रोजामांड, वो अपने अहंकार में डूबे हैं, जबकि डोरोथिया और मैरी सहानुभूति से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
और हाँ, बदलाव का विरोध, चाहे वो लिडगेट के मेडिकल सुधार हो या राजनीति, समाज नई चीजों से कैसे हिचकाता है, और सबसे बड़ी बात, अनुभव से सीखना। पात्र गलतियां करते हैं, दुख उठाते हैं और इसी से सीखते हैं, नैतिक रूप से बेहतर बनते हैं।
एलियट की लिखने की शैली भी कमाल की है। वो जो सर्वज्ञ कथावाचक है, जो सब पात्रों के मन की बात जानता है, वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, वो एक गाइड की तरह है जो हमें किरदारों के अंदर ले जाता है, उनके विचारों, उनके संघर्षों को समझाता है। कभी कभी तो सीधे हमसे, यानी पढ़ने वालों से बात भी करता है।
और वो मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद, किरदारों की अंदरूनी दुनिया, उनकी भावनाएं, उनके आत्मधोखे, एलियट इसमें माहिर थीं। उनके पात्र हमें असली लगते हैं अपनी अच्छाइयों बुराइयों के साथ। हर वाक्य कितना सोचा समझा लगता है, और वो प्रतीक, जैसे वो जाल या आईना।
हाँ, पियर ग्लास, कि कैसे हम दुनिया को अक्सर अपने ही अक्स में देखते हैं। वाकई बहुत बहुत गहरी समझ है इस उपन्यास में। इतनी जिंदगियां, इतने उतार चढ़ाव।
तो अंत में अगर एक या दो पंक्तियों में कहना हो तो मिडिल मार्च हमें सिखाता क्या है?
शायद यही कि जिंदगी का असली अर्थ अक्सर इतिहास बदलने वाले बड़े कामों में नहीं होता, बल्कि रोजमर्रा के वो जो छोटे छोटे अनदेखे नैतिक काम हैं, जो सहानुभूति है, जो हम रिश्ते ईमानदारी से निभाते हैं, शायद उसी में छिपा है। दुनिया की भलाई शायद इन्हीं छोटे अनगिनत कामों से धीरे धीरे आगे बढ़ती है।
हाँ, या शायद ये कि ना तो सिर्फ आदर्शों में जिया जा सकता है, ना ही पूरी तरह यथार्थवादी होकर। परिपक्वता शायद आदर्शों और असलियत के बीच एक संतुलन बनाने में है, अपनी सीमाओं को जानते हुए भी बेहतरी के लिए कोशिश करते रहने में।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।